ಸಂಬಂಧಕಂ ಬಜೀವ ಮನಃ ಪ್ರತಿಬೋಧಕಾರಕಮಿದಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಶ್ರೀ ಸಮಯ ಸಾರಣಾಮಧೇಮ ಅಸ್ಯ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥಕರ್ತಾರ ಶ್ರೀ ಸರ್ವಜ್ಞ ದೇವಾಃ ತದೋತ್ತರ ಗ್ರಂಥಕರ್ತಾರ ಶ್ರೀ ಗಣಧರ ದೇವಾ ಪ್ರತಿ ಗಣಧರ ದೇವಾ ತೇಷಾಂ ಚ ಅನುಸಾರಮಾಸಾದ್ಯ ಶ್ರೀಮತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರವರ ಶ್ರೀ ಕುಂದಕುಂದದೇವೈರ್ವಿರ್ಚಿತಂ ಮಂಗಲಂ ಭಗವಾನ್ ವೀರೋ ಮಂಗಲಂ ಗೌತಮೋ ಗಣೇ ಮಂಗಲಂ ಕುಂದಕುಂದಾರ್ಯೋ ಜೈನ ಧರ್ಮೋಸ್ತು ಮಂಗಲಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯಂ ಸರ್ವಕಲ್ಯಾಣಕಾರಕಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನಾಂ ಜೈನಂ ಜೈತು ಶಾಸನಂ ಕೋಟಿಶತಂ ದ್ವಾದಶೇವ ಕೋಟೋ ಲಕ್ಷಾಣಶೀತತ್ರಧಿಕಾನಿ ಚೈವ ಪಂಚಾದಶಸಹಸ್ರಸಂಖ್ಯಮೇತತ್ಕೃತಂ ಪಂಚಪದಂ ನಮಾಮಿ ಅರಹಂತ ಭಾಸಯಥಂ ಗಣಹರ ದೇವೇಂ ಗಂತ್ಯಂ ಸಮಂ ಪಣಮಾಂಬತಜುತ್ತೋ ಸುಧುರಾಣಭೋಯಂ ಶ್ರೀಸಾ ಇಚ್ಛಾಮಂತೆ ಸುತಭಕ್ತಿ ಕಾಜುಕುಕೋತಸ್ಸಾರೋಜಿಯಂ ಅಂಗೋಂಗಪೈನ್ಯ ಪಾವುಡ ಪರಮ ಸತ್ತಪಡಮಾನ್ ಭಗಪ್ಪುಗಯ ಸೂಲಿಯ ಚೇವ ಸುತ್ತೈತುಹಿದಮ್ಮ ಕಾಯ ಸಯಾನು ಚಿಕಲ ಮಂಚೇ ಪೂಜೆ ಮುಂದಾನ ಮಂಸಾಮಿ ದುಃಖ ಕೋ ಕಮಕೋ ಬೋಹಿಲಾ ಸುಗೈ ಗಮನಂ ಸುಮಾಯಿ ಮರಣಂ ಜಿನೂನ್ ಸಂಪತ್ತಿ ಮಜ್ಜಂ ಅಪ್ರಾಣಿಕ ಸ್ವಾಧ್ಯಾವಿಲಾಯಾಮ್ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಕಾಯೋ ಸರ್ಗಂ ವಂದಿತ್ತು ಸವ್ವಸಿದ್ಧಿ ಧೂಮಚಲ ಮನೋಭವಂ ಗಯಂ ಪತ್ತಿ ಓಚ್ಛಾಮಿ ಸಮಯ ಪಾವುಡ ಮಿನವು ಸುದ ಕೇವಲಿ ಬನಿದಂ ಸ್ವರೂಪ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಯೇ ಕಹಾ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ ಕಿಸೀ ಭೀ ದ್ರವ್ಯ ಕೋ ಪಹಚಾನಾ ಜಾತಾ ಹೈ ದೋ ಪ್ರಕಾರ ಸೇ ಏಕ ಸ್ವಭಾವ ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಔರ್ ಏಕ ಲಕ್ಷಣ ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಜೀವ ಕಿ ಪಹಚಾನ ಲಕ್ಷಣ ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಸೇ ದೇಖತೆ ಹೈ ತೋ ಉಪಯೋಗ ಹೋತಾ ಹೈ और जीव को यदि हम स्वरूप की अपेक्षा से सोचते हैं तो रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि से रहित और वह चेतनामय जीव का स्वरूप सिद्ध होता है। इसलिए यहां पर लक्षण न कह करके कि उसका स्वभाव क्या है यह बताया जा रहा है, क्योंकि लक्षण स्वभाव और विभाव दोनों में पाया जाता है। स्वभाव तो केवल विभाव की अनुपस्थिति में ही प्राप्त होता है, इसलिए सिद्धावस्था में जो रूप होता है स्वरूप होता है उसको हम यदि दृष्टि में रख लेते हैं तो निश्चित रूप से वह हमें प्राप्तव्य है, इस दृष्टि से उसको हम स्वीकार कर सकते हैं। और एक पहचान नहीं है तो पहचान के लिए चाहे स्वभाव चाहे विभाव हो कुछ भी हो वह पहचान में आ सकते, जैसे उपयोग की धारा तो वह उपयोग निबोध अवस्था में भी पाया जाता है और वह उपयोग अरहंत अवस्था में भी पाया जाता है और वह उपयोग सिद्धावस्था में भी पाया जाता है, किंतु स्वरूप जो है केवल सिद्धावस्था में ही पाया जाएगा, बाकी अन्य दशा में स्वरूप पाया नहीं जाएगा, क्योंकि वह स्वरूप यह बताया जा रहा अद्वस्थान जितने भी भाव हैं गुणस्थान जितने भी भाव हैं वे जीव के स्वरूप नहीं हैं। जीव का स्वरूप तो इस इन सब गुणस्थानातीत ही भाव होता है। इसके लिए इन्होंने ये गाथा दी है, मैं अरुस अरस अरूप हूँ, अगंध हूँ, अव्यक्त हूँ, चेतनामय हूँ या चेतना गुण से युक्त हूँ, अशब्द शब्द वाला मैं नहीं हूँ और किसी भी लिंग के द्वारा ग्रहण करने में नहीं आने वाला हूँ, यही एकमात्र जीव का स्वरूप है जो कि अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है। इस प्रकार विशेषणों के साथ सारे के सारे विशेषण इसमें निषेधात्मक है, केवल एक चेतना गुण को इन्होंने विधि परक दिया है। निश्चय नयेन रस रूप गंध स्पर्श शब्द रहितम, निश्चय से रस से रहित है, रूप से रहित है, गंध से रहित है, स्पर्श से रहित है और शब्द से रहित है। इसमें लगभग पांच इंद्री के विषय सारे आ गए। हम जिस किसी को भी देखते हैं तो रूप दिखता है, छूते हैं तो स्पर्श पकड़ में आता है, सूंघते हैं तो गंध सुगंध दुर्गंध के रूप में आ जाता है और सुनते हैं तो शब्द आता है, ध्वनि आती है। इसमें हम जीव को न ढूंढे, क्योंकि कितने भी ढूंढेंगे हम उसमें जीवत्व नहीं पाया जाएगा। अब कल्पना कर लीजिए या अनुमान कर लीजिए कि जीव का स्वरूप किस रूप में होता है, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अपढ़ हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो, कि व्यवहार में इन्हीं चार पांच साधनों के माध्यम से ही जीव की परिकल्पना करके व्यवहार करते रहते हैं। लेकिन इसमें जीव नहीं है, जीव का स्वरूप इसमें नहीं है। इतना अवश्य है कि शब्द बिना जीव का तो निर्माणित नहीं हो सकता। कितने भी रसायन शास्त्र पढ़ लो, पारंगत हो जाओ और शब्द का निर्माण आप नहीं कर सकते पुद्गल के माध्यम से। शब्द होना चाहिए, ध्यान रखना, ध्वनि तो संघर्ष हो जाए, शब्द होना चाहिए। शब्द वर्गना ही वहीं पर है और आत्मा के भाव के बिना शब्द वर्गना शब्द के रूप में परिणत हो जाए संभव नहीं हो सकेगा। मटेरियल पूरी पूरी भरी हुई है शब्द वर्गनाओं से, ये लोग ठसा ठस भरा हुआ है, किंतु ध्यान रहे वहां पर शब्द वर्गनाएं शब्द के रूप में तभी परिणत होंगे कम से कम उसके लिए जीव का परिणाम जो वचन वाक परिणाम के अभिमुख हुआ हुआ अनिवार्य है, उसके बिना संभव नहीं। सिद्ध परमेष्टि बनने से पूर्व में मान लो उपदेश दिए हैं, लेकिन सिद्ध परमेष्टि अब उपदेश दे नहीं सकते। वह जीवत्व तो उनके पास है, लेकिन उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं रहा जो शब्द वर्गनाए शब्द के रूप में वो परिणत करा सके। जो ही समुचरण को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं त्यों ही उनके पास वचन वाक योग भी है, फिर भी वह अब नहीं बोल सकते, क्योंकि वह बोलने के अभिमुख अपने परिणाम को अब करेंगे ही नहीं। यानी वचन प्रयोग करेंगे नहीं, भले वचन योग हो सकता उनको, तेरे गुण स्थान में एक आदमी ने रह गए तो हो जाएगा अंतरांतर मुहूर्त में, लेकिन प्रयोग नहीं करने का संकल्प है तो करेंगे नहीं, नहीं करेंगे तो वर्गनाएं शब्द के रूप में परिणत तो होंगी नहीं। शब्दों का संकलन करना, कैसेट बनाना ये अलग वस्तु और शब्द का उत्पादन करना अलग वस्तु है। वह शब्द का उत्पादन वचन योग के बिना संभव नहीं है और वचन योग किसी भी अन्य रसायन शास्त्र के माध्यम से किसी एक मशीन में आप पैदा करना प्रयास करो तो संभव नहीं है। ब्रॉडकास्टिंग करना अलग वस्तु है और बोलना अलग वस्तु है। माइक लगा दो तो प्रसारित हो जाएगा, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है तो ये अपने आप कुछ भी नहीं होगा। ऐसा आत्मा का परिणाम है जो शब्दातीत है, रस से रहित है, गंध से रहित है, स्पर्श से रहित है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के ऊपर श्रद्धान करता है तो वह अनुमानिक श्रद्धा नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार से संवेदित वह नहीं कर सकता। अभी वर्तमान में जो संवेदित होता है वह इंद्रियगम्य और मनोगम्य मिक्सिंग है, डायरेक्ट नहीं। जैसे करंट है क्या नहीं है, शब्द के माध्यम से आप सुन लेते हैं तो इसमें करंट है ऐसा, लेकिन आंखों से तो ये करंट देखने में नहीं आ रहे आप लोगों को। जब आंखों से करंट देखने में नहीं आते और शब्द सुनने में वह विस्तृत होकर के आ जाता है तो उसका साउंड बदल जाता है, तो कहते हैं यहाँ पर लाइट है या करंट है ऐसा अनुमान लगा देते, किंतु आंखों के द्वारा देखने में नहीं आया। उसी प्रकार वर्तमान में जो अपना संवेदन यद्यपि हो रहा है, लेकिन फिर भी वह स्वरूप का संवेदन नहीं हो रहा है। संवेदन इसी माध्यम से विश्वास करके हम इसमें जो मिक्सिंग है उसको दूर करना चाहें, तो विधिवत यदि मार्ग को अपनाते हैं तो अवश्य इसको हम पृथक कर सकते हैं। जो पय और पानी, कल जो कहा गया था पय मैंने दूध, पानी मैंने पानी, मिले अनादि से, अनादि से ये मिले हुए हैं, लेकिन अपने आप पृथक नहीं हो सकेंगे, यतन से बिछड़े कहा है। हम पुरुषार्थ करेंगे, विधिवत पुरुषार्थ करेंगे, तो पानी को और दूध को अलहदा अलहदा कर सकते हैं। अब वह एकदम नहीं कर सकते हैं, पहले श्रद्धान करना पड़ेगा, फिर बाद में अलहदा अलहदा हम करेंगे। कुछ उसके लक्षण हैं, जिन लक्षणों के माध्यम से पहचान करके उसमें जो भिदा हुआ है उसको हम अलहदा कर सकते हैं। उसी प्रकार लक्षण के अपेक्षा से हमारा ज्ञानोपयोग है, दर्शनोपयोग है, इनके माध्यम से अन्य द्रव्यों से उस जीव तत्व को हम पृथक पहचान लेंगे, विश्वास में लाएंगे। और यदि उसको बिल्कुल ही पृथक देखना चाहते हैं, जैसे मंथन करते हैं तो पानी पानी भिन्न हो जाता है और वह घृत भिन्न हो जाता है, उसी प्रकार यह जीव भिन्न होता है और तीनों प्रकार के कर्मों से रहित अवस्था को प्राप्त कर सकता है। जब प्राप्त करेंगे तो उस समय हमें जो उस तत्व का दर्शन होगा वह वर्तमान में उस प्रकार का दर्शन नहीं होगा। जैसे दूध में घी का विश्वास करना और घी का पृथक रूप से स्वाद लेना, यह दोनों भिन्न भिन्न वस्तु हैं। उसी प्रकार शरीर में जीव का श्रद्धान करना और स्वरूप के अनुरूप उसकी अनुभूति करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि रूप रस गंध स्पर्श शब्द रहितम मनोगत काम क्रोधादि विकल्प विषय रहितत्वेन अव्यक्तम सूक्ष्मम। और कैसा, मन में काम है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, विकल्प है, विषय आदि आदि से सभी से यह अव्यक्त है, ये व्यक्त नहीं है। क्रोध में तो व्यक्त हो रहा है, क्रोध में क्या व्यक्त हो रहा बताओ, स्वरूप तो व्यक्त नहीं हो सकता, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति की पहचान तो हम कर लेंगे लेकिन उसका स्वरूप के बारे में हमें कुछ ज्ञान नहीं होता, क्योंकि स्वरूप का बोध किसी भी इंद्रिय के द्वारा संभव नहीं है। ऐसा यह आत्म तत्व है जो अव्यक्त का अर्थ सूक्ष्म है। सो सूक्ष्म अव्यवाद अगुर लोगो सूक्ष्मत्व आदि के जो गुण बताए गए हैं, ये किसी न किसी कर्म के क्षय अभाव के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। तो सूक्ष्मत्व किसके माध्यम से उत्पन्न होता बताओ, नाम कर्म। तो अनेक प्रकार के आकार प्रकार जब तक आत्मा के साथ लगे हुए हैं, संस्थान लगे हुए हैं, उनका अभाव अनिवार्य है। अब जब अभाव हो जाता है तो वो अव्यक्त हो जाता है, किसी भी प्रकार से हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार से हम व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे आपने एक्सरे ली और आपके पास नेगेटिव जो फिल्म अपने पास सामने आ गया, वो फिल्म रे नहीं है, वह किरण नहीं है, उन किरणों के माध्यम से लिया हुआ वह फोटो है, एक्सरे है। अब उसके माध्यम से अब अनुमान लगाओ किरण कैसे होंगे, आंखों के द्वारा देखने में नहीं आते, लेकिन आंखों के द्वारा नहीं देखने में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कॉपी जो हमारे सामने आ गया हृदय की, तो उसको देख करके हम कह सकते हैं कि उन किरणों की ही यह परिणति है, उसका परिणाम है जो इस प्रकार हमारे सामने अपने हार्ट का चित्र सामने आया है। ये हार्ट का चित्र स्वरूप आ गया, लेकिन किरणों का कोई स्वरूप तो हमारे सामने नहीं आया, और किरणों के बिना नहीं आया ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये किरणों का चित्र तो नहीं कहा जाएगा। उसी प्रकार आज किरण जिस प्रकार अव्यक्त है हम लोगों के लिए, उसी प्रकार आत्म तत्व का जो स्वरूप है वह हमारे लिए अव्यक्त है, न रूप में है, न रस में है, न गंध में है, न स्पर्श में है, न शब्द में है। ऐसे आत्म तत्व को उस संवेदन को भी हम एकदम स्वरूप तो नहीं कह सकते।